Hare Krishna. This lecture was given on Chaitanya Charitamrita Adilila, 3rd chapter, 9th payar in Dwarka Temple on 23rd September 2015 by myself Prashant Mukund Das.
O Jiva Jago Gora Chanda Bole. Jeev jago, Gaura Chand bole.
Thank you.
हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
स्वागत है आज के चैतन्य चरितामृत कक्षा के अंदर। आज हमारा जो शीर्षक है प्रथम स्कंद, इसके अंदर जो आदि लीला है उसके तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय के नौवां और दसवां श्लोक। तो बोर्ड पर दसवां श्लोक लिखा है, तो नौवें श्लोक के अंदर क्योंकि तात्पर्य नहीं है इसलिए नौवां श्लोक पढ़ेंगे और दसवां श्लोक फिर हम सब साथ में पढ़ेंगे।
वैवस्वत नाम किया सप्तम मन्वंतर, सत्ताईस चतुर्युग तहार अंतर।
अनुवाद श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्तमान मनु सातवें मनु है और ये वैवस्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। 14 मनु के नाम इस प्रकार हैं, स्वयंभू सरोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सावरणी दक्ष सावरणी ब्रह्म सावरणी धर्म सावरणी रुद्रपुत्र रौच्य या देव सावरणी तथा भौत्य या इंद्र सावरणी। अब दसवां श्लोक या पयार हम पढ़ेंगे, आप इसे दोहरा सकते हैं साथ में।
अष्टाविश चतुर्युगे द्वापरे अष्टाविशम चतुर्युगे द्वापरे रक्षेशे ब्रजेर सहिते हये कृष्णेर प्रकाशे।
इसको साथ में करेंगे।
अष्टाविशम चतुर्युगे द्वापरे रशेशे ब्रजेर सहिता कृष्णेर प्रकाशे अष्टाविशम चतुर्युगे द्वापरे रशेशे ब्रजेर सहिता कृष्णेर प्रकाशे।
हाँ बोल सकते हैं।
अष्टाविश चतुर्युगे द्वापरे रशेशे ब्रजेर सहिते हाय कृष्णेर प्रकाशे
माता जी। तो अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में, बोलिए साथ में, 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रज धाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अब वैवस्वत मनु का शासन काल है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं और तभी उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अर्थात 14 मनवंतरों में एक बार प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ से जो 4,32,000,000,000 वर्षों का होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के इतने हजारे वर्ष, कितने 1,71,43,20,000 वर्ष बीत चुके होते हैं। ये 100 वर्ष के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज इन दोनों श्लोकों के ऊपर। बोले ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैता चंद जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैता चंद जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद जय गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत एक विशेष ग्रंथ जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया, और चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रभुपाद जी बोलते थे स्वीटेस्ट नेक्टर, सबसे मीठा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को सच में कृष्ण भावना भावित होना है तो उसको चैतन्य चरितामृत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यानी ज्यादातर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका, भगवद्गीता या फिर अनेकों ग्रंथ में तो ऊपर बढ़ते हैं तो भागवतम, और चैतन्य चरितामृत बहुत कम। इसी कारण से हम लोग ज्यादातर अगर बोले जाते हैं तो हरे कृष्णा वालों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन गौरंगा कुरुप या गौड़िया वैष्णव के नाम से कम लोग हमको जानते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव होने के नाते, गौड़िया वैष्णव होने के नाते, हमें चैतन्य चरितामृत की शरण भी ग्रहण करनी चाहिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहे हैं तो उनके जलदूत पर उनके पास एक ट्रंक है और उस ट्रंक में श्रीमद् भागवतम है, लेकिन वो लोड हो चुका है क्योंकि वो एक मालवाहक जहाज था तो वो लोडिंग हो गया है। लेकिन प्रभुपाद जी के हाथ में एक ग्रंथ है, वो कौन सा ग्रंथ है? भागवतम को प्रभुपाद दूर रख सकते हैं लेकिन चैतन्य चरितामृत को आप प्रभुपाद दूर नहीं रख सकते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में अगर सच्चा रस स्वादन करना है तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये जो अध्याय है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकृत्य के भार्य रूप से क्या कारण है, ब्रह्म रूप से क्या कारण है जिससे चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट होते हैं, कृष्ण जो है वो कैसे है दयावान दयालु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु है कैसे महादयालु। एडिशन हो जाता है ना, जैसे हम उगला प्रभु हमेशा बताते हैं एक होता है बोरोलिन एक होता है बोरोलिन प्लस, तो ऐसे ही कृष्णा है तो कृष्ण प्लस इस चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, महावदन्नाय अवतार। आप उनके आगे कुछ भी ऊट पटांग करके नाचेंगे ना, चाहे म्यूजिक लगा लीजिए कोई भी डिक चिक, और चैतन्य महाप्रभु का अगर फोटोग्राफ है सामने यानी फॉर डांसिंग, चैतन्य महाप्रभु समझेंगे आप हरे कृष्णा पे नाच रहे, इतने दया। कृष्णा के आगे नाचना है तो बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। वो कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचः, डरो मत मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन पहले नियमों का पालन करो, सारे धर्मों का परित्याग करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कुछ मत करो, जहां भी हो बस ग्रह थाके वने थाके सदा हरि बोले ढाके, घर में रहो कहीं पे भी रहो बस भगवान का नाम ले लो, मैं उसी से कृपा कर दूंगा, घर आकर कृपा कर दूंगा। हाँ, एक धोबी था जो कि कपड़े धो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा कि आप भी भगवान का भजन क्यों नहीं करते, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा भगवान का नाम लो। तो भी कहता मैं कपड़े धोऊंगा नहीं, काम भगवान का नाम लूंगा तो कपड़े आप धोगे। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु अवतार कहते हैं हाँ मैं कपड़े धोऊंगा, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस धोबी के कपड़े धोने लगते हैं और कहते हैं तुम क्या करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे नए भक्त जब गौड़िया मठ में आते थे तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे आप जाइए सबसे पहला ग्रंथ गीता मत पढ़िए, आप क्या पढ़िए चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत एक इतना सुंदर ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु की अनेकों लीलाएं सुनने मात्र से व्यक्ति का पत्थर जैसा हृदय पिघल जाता है। कृष्ण की लीला सुनने के लिए तो पहले गीता समझने आनी चाहिए, फिलोसफी तब भागवतम, उसमें भी स्कंद इतने सारे पढ़ने के बाद, लेकिन चैतन्य भागवत शुरुआत से रस स्वादन करने वाला ग्रंथ। तो भक्तिदान महाराज कहते थे गो एंड रीड इट, और फिर कई बार बोलते थे अगर आप अच्छा भक्त बनना है तो कितनी बार पढ़ना चाहिए श्री चैतन्य भागवत, मतलब चैतन्य के बारे में चैतन्य महाप्रभु के बारे में 108 times 108 बार। तो भक्तिदान महाराज से एक भक्त ने पूछा कि गुरुदेव प्रभुपाद
क्या आपने 108 बार पढ़ा है? भगवान महाराज ने कहा हाँ, जिस प्रकार तुम जप की माला 108 करते हो उस प्रकार से मैं भागवत चैतन्य भागवत पढ़ता हूँ। मैं नहीं चाहेंगे 13 पुत्रों बच्चों में से सबसे अलग विलक थे। क्यों? विलक्षण प्रतिभा कैसे आती है? भगवान की सेवा करने से, भगवान की सर्वोपरि सेवा है भगवान के नामों का जप, भगवान के बारे का अध्ययन और भगवान के बारे में श्रवण। ये जो व्यक्ति करता है सबसे बड़ी सेवा है वैष्णव और भगवान दोनों की। कृष्ण की सेवा लोग बोलते हैं कुछ सेवा चाहिए, कचौड़ी बांटना चाहते हैं मंदिर में, पकौड़ी बांटना चाहते हैं मंदिर में, उससे बड़ी सेवा है कृष्ण के बारे में सुनना और चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना। किसी वैष्णव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर आपसे वैष्णव अपराध हो जाए तो आप जाकर बोल नहीं सकते कि अपराध हो गया, इतनी ईगो हमारे अंदर होती है, हम शरणागत नहीं हो सकते। तो भक्तिराम महाराज कहते हैं कि अगर आप किसी वैष्णव अपराध से मुक्त होना चाहते हैं तो उस वैष्णव की कथा में चले जाइए। जिस वैष्णव की कथा में बहुत सारी भीड़ हो, जैसे ना संडे को हमारे लेक्चर में, हमारे जब मैं लेक्चर में बहुत सारी भीड़ होती है, मुझे पता चलता है बहुत सारा अपराध किया होगा, इसलिए आते कथा सुनने, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमें चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन में जब वास करते थे तो राधा दामोदर मंदिर में उनके एक बहुत ही अनन्य भक्त थे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, तो वो बहुत सुंदर भागवतम आंख का ग्रंथ की रचना भगवतम का वर्णन करते थे और बाकी 5 गोस्वामी बैठकर सुनते थे। तो उन्होंने शेड्यूल बनाया था 6 घंटे भागवतम 2 घंटे चैतन्य चैतन्य रेगुलर, जैसे हमने बनाया 7 दिन भागवतम क्लास में से 6 दिन भागवतम 1 दिन चैतन्य चैतन्य। तो चैतन्य चैतन्य को अपने जीवन में स्थान देंगे तभी हमारे को क्या होगा, कृपा प्राप्त होगी। कृपा मतलब कर और पाप, करेंगे नहीं कुछ भी, गौर गौर बोलने से हमें काम नहीं चलेगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा। अब तो राधा दामोदर टेम्पल में जब थे तो बताते हैं चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य लीला गान, चैतन्य महाप्रभु के बारे में रोज कथा सुनते थे और रोज चैतन्य महाप्रभु का लीला गान होता था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैना लिखते हैं बाबा सिंधा तरे बारे आचे जारे चिता श्रद्धा करी सुनी सही चैतन्य चरित्र। जो व्यक्ति चैतन्य चरित्र मित को चैतन्य चरित्र को श्रद्धावान होकर सुनता है वो क्या कर सकता है? भव सिंधु तारी बारे, भव के सिंधु से वो पार हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अगर हम सोचे कि बिना श्रद्धा पूर्वक सुने हम इस सिंधु से पार कर जाएंगे इस प्रॉब्लम से तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांगारा मधुर लीला जार करने प्रवेशीला हृदय निर्मल भैला तार। जो गौरांग की मधुर लीलाओं का श्रवण करता है जार करने प्रवेशीला और कान में जैसे ही गौरांग महाप्रभु का नाम जाता है बस हृदय निर्मल भैला तार। लोग बोलते हैं हमारा हृदय तो पत्थर जैसा है, पत्थर जैसा है, तो फिर उनको पत्थर जैसे को अगर आपको सॉफ्ट बनाना है कोमल तो उसका तरीका क्या है? चैतन्य चरितामृत सुनना। चैतन्य महाप्रभु गौरांगेरा मधुर लीला जार कान प्रवेशीला, कान में घुसते ही क्या होगा हृदय निर्मल भैला तार, उसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा ना। तो हमें ये सुनना चाहिए चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के बारे में। हाँ देखिए भक्त भी कितना सुंदर लीलाएं करते हैं। एक बार इंदोलिनेंस राधानाथ स्वामी महाराज और जिना निवास प्रभु मायापुर में मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि यू आर अ वेरी नाइस डिवोटी। राधानाथ महाराज कह रहे थे किसको? जिना निवास प्रभु को। यू आर वेरी नाइस डिवोटी, यू आर सर्विंग गौरांग महाप्रभु इन नवदीप धाम इन मायापुर, यू आर अल्टीमेट मोस्ट टॉप मोस्ट डिवोटी। तो उन्होंने बोला नो नो नो, माय हार्ट इज लाइक रॉक, मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है। तो राधानाथ महाराज ने फिर दोबारा आंसर दिया हाँ पत्थर जैसा तो है पर गिरी गोवर्धन जैसा। तो ऐसे ही भक्तों को इस प्रकार से रस स्वादन करना चाहिए, कोई कुछ बोले भी तो उसमें से पॉजिटिव चीजें निकालनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी से भक्तों ने जब उन्होंने चरित्र का रचना किया तो कई लोग आकर बोलते थे ये कैसा ग्रंथ लिखा है समझ से बाहर है। आदि लीला पढ़ेंगे ना तो मन करेगा चैतन्य चरितामृत कभी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये वो है टिकट लेने के लिए जो भीड़ में लगते हैं ना, एसी का टिकट लेना हो या कोई भी ट्रेन में तो बहुत लंबी लाइन लगती है, लेकिन एक बार वो मेट्रो का टिकट मिल गया फिर एसी में ट्रैवल करो आराम से बिना ट्रैफिक के। तो ये आदि लीला का पहला अध्याय 5 अध्याय ना पंचम अध्याय ये पार हो जाए, पंच तत्व का वर्णन उसके बाद फिर देखो आनंद का रस स्वादन सागर एसी में ट्रैवल करेंगे। एसी एसी मतलब अभय चरणारविंद भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण में बैठ के आराम से ट्रैवल करते रहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज से जब बोला कि ये कठिन ग्रंथ है समझने में तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन बोला कि मैंने इसी के अंदर इसका सॉल्यूशन भी दिया है कि अगर ये कठिन ग्रंथ समझ में नहीं आता तो कैसे इसको समझा जाए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चैतामृत के अंदर वर्णन करते हैं, जे बधाई भुजे केहा सुनिते सुनिते सा के अद्भुत चैतन्य चरित्र। जे बधाई भुजे बा कैसे समझ में आएगा, केहा सुनिते सुनिते बार बार सुनना पड़ेगा, ये नहीं एक बार सुना कोई लेक्चर एक घंटे का बस उसके बाद अभी हम तो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त बन गए, नहीं। जे बधाई भुजे केहा कैसे समझ में आएगा, सुनिते सुनिते बार 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 के अद्भुत चैतन्य चरित्र, इतना अद्भुत समझने के पार। और लेकिन समझ में आएगा कैसे, सुनिते सुनिते बार 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 बार। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील गोपाल की जय। नरोत्तम दास ठाकुर रोते थे जब वो चैतन्य चैतामृत को समझ नहीं पाते थे, तो कहते थे कि कृष्णदास कवि राज रसिक भक्त माझ। कैसे भक्त हैं कृष्णदास कविराज, इन्होंने चैतन्य चैतामृत की रचना करी, रसिक भक्त है ना, रसिक भक्त होते हैं ना, जैसे हमारे मंदिर में भी अनेक रसिक भक्त हैं, वो अपने रस स्वादन में रहते हैं, उनको मतलब नहीं कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपने आनंद में, तुम्हें जुड़ना जुड़ जाओ, हमसे नहीं जुड़ना मत जुड़ो। हम लोग लगे रहते हैं प्रीचिंग करने में, DYS ये वो, उनके लेवल पर जाके समझाएंगे, लेकिन रसिक भक्त अलग है। तो कृष्णदास कविराज के लिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ, जे रचिला चैतन्य चरित्र। इतने रसिक हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इतना सारा आदि लीला मध्य लीला अंत लीला लिख डाला। कोई यदि लिख सकता है तो उसका मतलब उसने पहले उसको एहसास किया है ना, जैसे आप किसी को लव लेटर लिखते हैं, पहले प्रेम होगा तभी तो लिखते हैं, या फिर गुरु महाराज से ग्लोरिफिकेशन लिखते हैं, दो लाइन लिखने में आदमी को प्रॉब्लम होती है, लोग लंबे लंबे, जैसे मैं देख रहा था अमोगला भुज ने इतना लंबा लिखा था गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन, तो वो लिखने के लिए पहले प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, तभी तो लिख सकते हैं। तो किसी ने अगर इतना सारे 7 बुक्स लिख डाले डिफरेंट डिफरेंट, इतने सारे प्यार लिख डाले तो किसके कारण, प्यार मीन्स पहले प्यार होगा तभी तो प्यार आएगा, प्यार ही नहीं तो प्यार कहाँ से आएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने 2 ग्रंथ लिखे, जानते कौन से ग्रंथ, पहला तो है चैतन्य चैतामृत और दूसरा मालूम है श्री गोविंद लीलामृत। गोविंद लीलामृत भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा और दोनों ही अल्टीमेट ग्रंथ, इनको पढ़ने सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। कहते हैं, गौर गोविंद लीला सुनिते गलाया शीला। इन गोविंद और गौर के लीलाओं को सुनने से कैसा हो जाता है, गला पूरा शील हो जाता है, भर जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। ताहे न डूबीला मोरा चिता, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं लेकिन फिर भी मेरा चित इसमें नहीं डूब रहा है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। नरोत्तम दास ठाकुर इतने प्रेमी थे चैतन्य महाप्रभु के कि स्कूल से आते थे, स्कूल का बैग फेंकते थे एक साइड और सीधे चले जाते थे, कहां उनके गांव में एक कृष्णदास नाम के भक्त रहते थे और उनसे जाकर कहते थे सुनाइए ना कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनाइए ना, जाकर बोलते थे और फिर रोज चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी सदा, जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपना भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू किया तो उनके एक भक्त थे वो आए और बोले कि प्रभुपाद मैं अकेले कमरे में रहता हूँ, मेरे पास कोई सेवा नहीं है और मैं ना जप करता रहता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं होता मेरे को, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा जब करके तुम बोर हो जाते हो, अच्छा जब तो चैंट एंड भी हैप्पी होता है, तुम चैंट एंड सैड हो रहे हो, तो ठीक है इसका मतलब तुम्हारे चैंटिंग प्रॉपर नहीं है, तुम्हें किसी सेवा में लगाना चाहिए। तो उन्होंने कर्णधार प्रभु को बुलाया और कहा कि कर्णधार प्रभु ये देखो ये प्रभु जी जो है इनको जब में मन नहीं लगता, बोर हो जाता है, तो कोई सेवा करना चाहिए। तो क्या सेवा करोगे, कह रहे मैं टाइपिंग अच्छी कर सकता हूँ, ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, आपकी जो डिक्टाफोन रिकॉर्डिंग्स है उनको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम एक काम करो, अगर तुम सच में अपने जप में मन लगाना चाहते हो तो तुम क्या करो, बोले गीता पढ़ू नहीं, फिर भागवतम पढ़ू नहीं, चैतन्य चैतामृत पढ़ू और उसका ट्रांसलेशन करो। तो उन्होंने कहा ट्रांसलेशन तो मेरे बस की बात नहीं है प्रभुपाद, आप ट्रांसलेशन करिए मैं उसको टाइपिंग कर दूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा ओके, प्रभुपाद जी ने भागवतम बंद किया, चैतन्य चैतामृत ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया और पहले चैतन्य चैतामृत का ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया और बोले कि तुम इसमें इंगेज हो जाओ, पहले तुम इंगेज हो जाओ, तुम्हें कृष्ण भावना भवित मिल जाए, मैं तो बाद में अपना करता रहूंगा। और हम कैसे होते हैं, पहले मैं अपना कर लूं उसके बाद दूसरों का देखूंगा। और प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार से हैं, पहले वो कहते हैं मैं तब भगवत धाम जाऊंगा पहले जब ये सारे लोग चले जाएंगे, है ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं बाकी जाए भाड़ में पहले मैं जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से हमारी टेंडेंसी है, हमें बदलना पड़ेगा। भक्त जो होता है वो कैसा है, कंपैशनेट करुणामयी, चैतन्य महाप्रभु तो करुणामयी है, जो भी को भगवत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है क्या कि जिसको भी मिले उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण उपदेश करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करना चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन उन्होंने शुरू किया। और फिर प्रभुपाद वापस अपने भागवतम डिक्टाफोन से भागवतम करते थे, और एक स्टडी रूम था प्रभुपाद जी का, उसमें जाकर चैतन्य चरितामृत करते थे उनके लिए, ताकि वो इंगेज रहे। लेकिन प्रभुपाद डबल सेवा कर रहे हैं, इधर पहले भागवतम किसी और डिवोटी के लिए, और फिर उधर चैतन्य चरितामृत किसी और डिवोटी, और फिर चैतन्य चरितामृत का पहले खत्म हो गया ट्रांसलेशन, भागवतम चलता रहा। तो इस तरह से आप सोचिए, प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को स्पेशल ग्रंथ बताया, भागवतम के बीच में से उठाकर पहले चैतन्य चरितामृत। तो हमें भी उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत को ध्यान पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए, है ना। तो हम आज के श्लोक पर आते हैं। सोच रहा था गुणगान करना चाहिए आदि लीला चैतन्य चरितामृत के बारे में। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है अष्टाईशे चतुर्युगे द्वापरे शेषा ब्रजेर सहित है कृष्णेर प्रकाशे। तो इसमें बताया गया है कि वैवस्व नाम ही सप्तम मनवंतर, वैवस्वत मनु जो है ये सातवें मनु है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु अवतार लेते हैं, 14 मनु। उन 14 मनु जो है वो एक एक मनु कितने लंबे दिन जीता है सुनिए। मनु मतलब मनुष्य जाति के प्रजनन जो करने वाले प्रथम जीव मनु, उनसे मनुष्य या मानव आते हैं। तो जो ये मनु है ये 7 मनु बीत चुके हैं। तो अभी जो मनु है ये है वैवस्वत मनु, और इससे पहले जो थे वो थे उत्तम मनु, तामस, रेवत, चाक्षुष, ये 6 निकल चुके हैं, स्वयंभूर और सर्वचिष। तो ये 6 मनु निकल चुके हैं, अभी वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। और वैवस्वत एक मनु जो है वो 71 चतुर्युग में जाते हैं, 71 टाइम्स 71 चतुर्युगों में। तो 71 टाइम में से अभी कौन सा चल रहा है ये वाला चतुर्युग में, 28वां चतुर्युग, 28 विंशे चतुर्युग है द्वापर एर शेष। तो अभी द्वापर खत्म हुआ और कलयुग शुरू हुआ। तो द्वापर में आते हैं कृष्ण भगवान और कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। और फिर इसके आगे अभी 71 में से 28 माइनस करें तो और चतुर्युग बाकी है। और चतुर्युग की गणना करें तो प्रथम चतुर्युग में कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग जो होता है वो 12,96,000 साल का, और सतयुग 17,28,000 साल का, मतलब 43,20,000 सालों में चतुर्युग है। इतना लंबा एक चतुर्युग, ऐसे जब 71 बार जाते हैं तब एक मनु जाते हैं, और ऐसे जब 14 मनु समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे समाप्त होते हैं, 12 घंटे, और फिर रात्रि में 12 घंटे में 14 मनु, और फिर इस प्रकार से 30 दिन का एक महीना, 365 का एक साल, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी का जीवन है। तो पूरे ब्रह्मा जी के जीवन काल में जब एक मनु आते हैं तो इस 14 मनु की रचना में कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक बार आते हैं, और वो कब आते हैं, 28 चतुर्युगे द्वापरे शेषा। 28वां जब चतुर्युग चलता है तब उसमें कृष्ण भगवान आते हैं द्वापर में, और जब द्वापर समाप्त होने वाला होता है तब फिर क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं 500 वर्ष पूर्व। तो हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान को समझने के लिए आपको कृपा की जरूरत है। जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम पर थे तब उनको किसी ने नहीं समझा, दुर्योधन इनके सामने खड़े हुए भगवान, लेकिन उनको भगवान नहीं मान रहा, नहीं मानता था। गीता जब अर्जुन ने सुनी तब दुर्योधन भी देख रहा था। तो लोग कहीं आते हैं ना, जब लेक्चर चल रहा होता है दर्शन करते हैं घर चले जाते हैं, या फिर कई लोग कथा में नहीं आते भागवतम में, सिर्फ दर्शन में आते चले जाते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि दर्शन कानों से होता है, आंखों से नहीं होता। आंखों से दर्शन अगर होता तो शिशुपाल भी भक्त बन जाता साक्षात कृष्ण के दर्शन, दुर्योधन ने साक्षात कृष्ण के दर्शन, लेकिन धृतराष्ट्र ने साक्षात कृष्ण के दर्शन, लेकिन भक्त कौन बना, अर्जुन। क्यों, उन्होंने क्या सुना था, भगवद गीता। परीक्षित महाराज क्यों भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सुना, भागवतम। तो इस तरह से सुनने मात्र से व्यक्ति क्या बनता है, भक्त बन जाता है भगवान का। तो हमारे में साक्षात भगवान आए हैं कलयुग में, कौन, चैतन्य महाप्रभु, और नाम के रूप में भगवान आते हैं, कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो जब कृष्ण अवतार लेते हैं नाम के रूप में तब हम उनको समझ ही नहीं पाते, हम समझते हैं ये एक विधि है, विधि पालन करना है ना, बस जपना ही तो है, क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे कि ये साक्षात भगवान है तो बस गया, एक बार मनुष्य जीवन मिला है लॉस्ट, चला जाएगा, फिर दोबारा ये मौका, फिर ना मिलेगा ये मौका दोबारा, गाना दादा फिर ना मिलेगा दोबारा, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बस लास्ट टाइम, इसके बाद फिर कुत्ता बनो बिल्ली बनो वो भगवान की इच्छा, जो बनना हो आपके कर्मों के अनुसार, लेकिन अभी भक्त बनने का एक ही मौका। तो इस मौके में पांडवों ने बहुत अच्छा किया, भगवान को भक्त समझ गए, भगवान को भगवान समझा, उनको ये नहीं समझा रहे ये तो हरि नाम एक लकड़ी की माला पे हरि कृष्ण ही तो है, पता नहीं कौन सा दिन था मनुज जब आ गया इस फोन में, कौन सा डिवाइस अटेंड कर लिया मैंने ना, उसके बाद एलएसएम पामोगले आपको चुटकुले सुनाते रहे, मैं भी फंस गया उनकी बातों में, फिर बाद में बोले सोला माला जप करो, ये तो फंसा दिया मैंने, ये तो फंसा देते हैं लोग तो इस कौन वाले, और फिर कहते सोला माला जप करो, चार पाप नियम करो, पहले प्रसाद खिलाते हैं सब फीस फीस फीस, और फिर जब भक्त बन जाते हैं तो फिर कहते हैं अभी ना आज व्रत पालन करना आपको पूरा देना एकादशी आज आप पूरा कैलेंडर पकड़ा देते हैं। तो हम लोग तो मजा कर नहीं पाते ढंग से, तो बहुत परेशान होते हैं कई लोग। तो हमें भगवान को अभी समझना पड़ेगा कि भगवान सच में भगवान है। जैसे भागवतम में श्लोक आता है, पांडवास कहते हैं तथा ध्यानम उतित्राय भक्त्या विश्वोद्घिष्णम परे तस्मिन् नारायणम पदे एकांत मतयो गतम, नारायण के चरणों में एकांत मतयो गतम, बस एक मति कर ली क्या, कृष्णेर मति अस्तु, बस और कुछ नहीं, कृष्ण के चरणों में मति, इधर उधर सब बेकार, कोई बात नहीं करूंगा, बस कृष्ण मेरे जीव मेरे टारगेट लाइफ टाइम कृष्ण है। तो पांडव कैसे गए धाम में छोड़कर अपने स्वशरीर भगवत धाम प्रवेश कर गए, और हम कैसे जाते हैं राम नाम सत्य उठाने को लोग तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम अगर जाना चाहते हैं स्वशरीर भगवत धाम, हाँ स्वशरीर तो नहीं जाएंगे इतने अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन कम से कम अगर अंतिम समय में कृष्ण स्मरण हो जाए तो वही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसके लिए आज जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए, हाँ कृष्ण को भगवान मानना चाहिए, लेकिन लोग कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान के नाम को भगवान नहीं मानते हैं। तो कुछ चीजों से हमें समझना चाहिए, जैसे बोलते हैं ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन माया जाल हटे पाए कृष्णेर चरण, कृष्ण चरण कम हट मिल जाएंगे जीवन में, ताते कृष्ण भजन करे गुरुर सेवन, खाली भजन से भी काम नहीं चलेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो चाहे पद प्रदर्शक गुरु हो, लेकिन आपको क्या होना पड़ेगा, उनके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने रात रात बैठ के ग्रंथ लेके हम पढ़ने को तैयार नहीं है, अगर थैंकफुल नहीं है तो इसीलिए कारण प्रभुपाद जी की सेवा क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं यू वांट टू सर्व मी चैंट योर राउंड्स प्रॉपरली एंड रीड माय स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ते ने जिस दिन से मिला है लाइफ मेंबर तो बन गए, बुक्स मिली थी उस दिन से कार्टन वैसा का वैसे ही रखा हुआ है घर में, छोटी वाली किताब सबसे छोटी वाली निकालते हैं दीर्घ उपदेश 10 रुपए वाली, या फिर रसराज श्री कृष्ण आप शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ जी रोज एक पन्ना पढ़ते हैं, अच्छा भगवत गीता का दो एक पन्ना चार श्लोक, और पता चलता है बाद में कृष्ण का वो कृष्ण रसराज श्री कृष्ण छोटा वाला बुकलेट का एक पेज पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ताते कृष्ण भजन करे गुरुर सेवन माया जाल हटे पाए कृष्णेर चरण, माया का जाल तब हटेगा जब ये सेवा करेंगे और फिर साथ में हरे कृष्ण जपेंगे, और प्रभुपाद की सेवा क्या है, उनके ग्रंथों का वितरण ग्रंथों का अध्ययन करना है ना। और ये हमें समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि हम गुरु की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग क्या है गुरु के ऊपर या फिर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, और प्रेम ना करने के कारण चार कारण जो समझ में आते हैं कि किसके कारण हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। तो उसमें से प्रथम कारण है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी, हम कौन है कहाँ से आए हैं, ये भूल जाते हैं। बहुत सुनते हैं डीवाई सेमिनार में हु एम आई, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और फिर मंदिर में भी बहुत बार बोलते हैं भक्त जब आती है बारी अपनी कुछ चीज बचाने की, है ना प्रभु जी आपने बर्थडे पे कुछ पार्टी नहीं दी, हम तो आत्मा है ना पार्टी की क्या आवश्यकता है, लेकिन कोई गाली दे आपको, आपकी बुद्धि नहीं है, आप ऐसी सेवा करते आपका दिमाग नहीं है, अरे मुझे उल्टा बोल दिया अब आत्मा कहां चली गई, अब मैं शरीर हूं, तो अपनी भेद अनुसार अपनी परिस्थिति के अनुसार कभी आत्मा कभी शरीर, तो लिखना चाहिए आज मैं आत्मा हूं आज मैं शरीर हूं, परिस्थिति के अनुसार, तो हमें भी पता रहे आज आत्मा है तो बोल सकते हैं, आज शरीर है तो आज नहीं बोलेंगे, तो इस तरह से पता रहना चाहिए। तो रियल आइडेंटिटी हम भूल गए, जैसे एक बार एक व्यक्ति कुछ दिन पहले क्लास में भी बता रहे थे कि एक व्यक्ति बिहार से आए थे, तो बिहार के जो लोग दिल्ली आते हैं तो उनके पास दो ही चीजें होती हैं, क्या एक गमछा और एक धोती, वो लेकर आते हैं ट्रंक लेकर एक लोहे का, और वो लेकर आते हैं और फिर उस ट्रंक के अंदर क्या रखते हैं, एक धोती रखते हैं और एक गमछा रखते हैं, और इस एक गमछे से स्नान करते हैं, फिर धोती को सुखा देते हैं, धोती जब सूख जाती है धोती पहन लेते, गमछा रख देते हैं, तो ये करते हैं। जब जॉब मिल जाती है तो ऐसे एक व्यक्ति थे बिहार से दिल्ली आए, और फिर उन्होंने धीरे 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 डेवलप किया, तो पहले एक आई पर ठेकेदार लगे, फिर कुछ लगे, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और बढ़ते बढ़ते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के बाद वो कभी कभी क्या करते थे, उनका डेली नियम था लंच टाइम में जाते थे अपने रूम में, ट्रंक खोलते थे और फिर ट्रंक बंद करते थे, वापस आते थे। तो कुछ लोगों ने देखा कि दोपहर के समय कहीं जाता है, ट्रंक खोलता है, कुछ तो जाता है, कुछ तो चक्कर है, कैश का लेन देन बड़ा करता है ना। तो मान लीजिए हम श्यामलाल ग्रुप के पास बहुत सारा कैश पड़ा है और बार बार ये पीछे कंटेनर का ताला खोल रहे, फिर आ रहे, फिर जा रहे, अरे कुछ तो गड़बड़ है अंदर, कुछ तो चल रहा है। तो फिर इसी तरह से सब लोग उनको, फिर पीयूष गुप्ता ब्रो जाकर बोले अमोघला ब्रो कुछ लगता है गड़बड़ है, हर एक घंटे हर दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के बीच में कंटेनर बंद कर लेते हैं अंदर से, कुछ करते हैं अंदर, कह रहे अच्छा चलो सारे साथ में रंगे हाथों पकड़ते हैं क्या करते हैं। तो इस तरह से सब गए पकड़ने के लिए, तो फिर वो उनका जो मालिक था वो भी गया साथ में, अच्छा ऐसा कुछ है, इसने तो खजाना बना लिया हुआ घर में, चलो चलो देखते हैं। घर गए तो जाकर देखा कि वो व्यक्ति ट्रंक खोल रखा था और रो रहा था। तो सबने कहा कि क्यों रो रहा है, तो देखा कि वो एक ट्रंक खोल रखा है और उसके अंदर एक गमछा रखा है, उसको देख देख के रो रहा है। तो फिर उसने मालिक ने पूछा बता पैसे कहाँ हैं, अब पैसे छुपा दिए, रोने का ड्रामा करता है, हाँ रंगे हाथों पकड़ा गया तो रोने लगा। तो बोला कि नहीं 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 मैंने कुछ पैसे नहीं चुराए, मेरी जब माँ थी तो उन्होंने बोला था जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो, बिहार से आए हो गमछा लेकर, आज तुम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, लेकिन ये याद रखो एक दिन जब तुम आए थे तब तुम एक गमछा लेकर आए थे, तो इससे तुम कभी भी प्राइड अहंकार मद में नहीं आओगे। ऐसे भक्त को जब वो मंदिर में प्रवेश करता है ना तो दंडवत करता है, वहां मैंने देखा है कि लोग फूल वाले से दंडवत शुरू करते हैं, फिर चप्पल के पास, फिर वहां वहां दंडवत, फिर प्रभुपाद को, फिर भक्तों को, फिर ये वहां तक पहुंचते पहुंचते 100 दंडवत कर चुके होते हैं ऑलरेडी। लेकिन जब वो सीनियर बन जाते हैं 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उसके बाद तो फिर दंडवत ही बंद हो जाता है। फिर उसके बाद तो प्रश्न भी होते हैं, ऐसे कल प्रश्न पूछ रहे थे कुछ भक्त, दंडवत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसे करते हैं भी उसके बाद तो फिर बोलना भी छोड़ देते हैं, खाली जब प्रभु जी मिलते, प्रभु जी आप शायद सेवा में बिजी थी ना, ऐसे करके चले जाते हैं। व्हाट इज दिस, वो कहाँ है वैष्णव एटिकेट? हाँ प्रभु जी का बता रहे थे क्लास में, वैष्णव मीन्स वैष्णव एटिकेट, वैष्णव मतलब वैष्णव एटिकेट। तो क्यों हो रहा है वो धीरे धीरे दंडवत, अहंकार बढ़ता जाएगा दंडवत कम होते जाएंगे, अहंकार बढ़ता जाएगा दंडवत। अब कई लोग तो भगवान को भी दंडवत करना छोड़ देते, अरे 3-3 बार कौन लेटे, एक ही बार में वहीं से लेट करना, ओके जरूरत ही नहीं दंडवत करने की। तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं, हम मंदिर में जब प्रवेश करते हैं कि हम पहले दिन आए थे तो हमें जप माला पकड़नी नहीं आती थी, आज एक्सपर्टली 16 माला करते हैं तो आप तीरंदाज बन गए, माया कभी भी आपको पकड़ सकती है। गुरु महाराज जो है इसोलिनियस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनसे भक्तों ने पूछा कि महाराज आप तो लोगों को दीक्षा देते हैं फिर आप क्यों जप करते हैं? हाँ तो महाराज ने कहा माया कैन कैप्चर एनी टाइम इवन सन्यासी रेनंसिएट्स, तो इसलिए पावरफुल है माया की वो आपको हमेशा उसकी जद्दोजहद चलती रहती है। अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जन्माष्टमी जब आए तो बोल रहे थे आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है, माया का थोड़ी होता है, तो वो तो आपको कैप्चर कर सकती है। तो इसलिए आपको तो 7 दिन की लड़ाई है भक्ति में, नो छुट्टी। हमसे लोग बोलते हैं अभी तो आप काम धंधा छोड़ के मंदिर में रहते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, तो छुट्टी कब करते हैं? भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है, रोज 16 माला का जप करना है नियम पूर्वक ध्यान पूर्वक। क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और ये तो भूलते भूलते हैं, साथ में ये भी भूल जाते हैं कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास सर्वेंट। नाम तो लिख लिया प्रशांत मुकुंद दास, दास तो गया बकवास साइड में, अब इत मैं हूँ प्रशांत मुकुंद मास्टर लीडर हेड। हाँ प्रभु जी मेरे को बताओ ना, दास बोल दिया इन्होंने, बताओ सर्वेंट बोल रहे हैं, सही तो बोला, आपकी स्थिति का आपको एहसास कराया, दास हो तो दास ही तो बोलेंगे, कोई आपको बोले अबे नौकर इधर आ तो बुरा लग जाता है, अबे नौकर बोल, अरे नौकर को नौकर नहीं बोलेंगे हम, दास है तत्पर रहना चाहिए। हाँ हाँ बोलिए ना, सही तो बोला आपने, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं आ चुके कि हम दास हैं सर्वेंट हैं। तो वैसे ही याद रखना चाहिए हम एक आत्मा है। भगवत धाम से जब आए तो जैसे उस बिहार से आने वाले पुरुष की माता ने बोला याद रखना कितने ही बड़े बन जाना कि तुम गमछा लेकर आए थे। ऐसे ही जब हम आए संसार में तो भौतिक शरीर भी नहीं मिला था, तो क्या थे हम? आत्मा। जब जाएंगे तब क्या रूप में जाएंगे? आत्मा। शरीर तो इस संसार में मिला हमको, लेकिन फिर भी इससे अटैच हो गए। ऐसा शरीर वैसा शरीर, ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा, इसी में फंस गए सारा। तो फिर गुरु के प्रति अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो दूसरा कारण जो समझ में आता है वो है अनग्रेटफुल नहीं होना वैष्णवाद और गुरु के प्रति। हम उनके ऋणी नहीं हो पाते, कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं, कृपण बन जाते हैं, कंजूस, थैंकफुल नहीं होते। प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ दिए, प्रभुपाद जी की कोई सेवा दी जाए ना, जैसे अभी जन्माष्टमी पे सेवा फॉर्म भरवाए गए, सारे लोग गायब थे, जिन्होंने भरा वो भी गायब। सेवा के टाइम पे तो 5-6 लोग ही खड़े थे बस, और 250-300 लोगों ने सेवा फॉर्म भरा, सिर्फ सारे गायब, सिर्फ 7-8 लोग ही खड़े थे। सेवा करना नहीं चाहते, अनग्रेटफुल, नो थैंकफुल। और फिर क्या कहते हैं, जब रात को 11 बजे महाप्रसाद बट रहा था तब सब स्टेज पे चढ़ गए, या फिर सेलिब्रिटी आए तो स्टेज पे चढ़ गए फोटो खिंचाने, लेकिन कहा जाए ये बक्सा उठा के वहां रख दो तो सब रोज मेरी वो सेवा यहाँ खड़े हुए गप्पे मार रहे हैं, लेकिन सेवा करने को कोई तैयार नहीं। जब आती है सिचुएशन सेवा करने की, ग्रेटफुल होने की, थैंकफुल होने की, गुरु महाराज, प्रभुपाद, गुरुदेव, वैष्णवाज, सब बकवास, छोड़ देते हैं सब कुछ। अब तो ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे एक बार एक कथा आती है कि एक शेर था, उसके पीछे वो एक आदमी के पीछे पड़ गया, वो आदमी भागते 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 उसे याद आया शेर तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तो एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा तो भागते 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 वो पेड़ पे ऊपर 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 टॉप पे पहुंच गया। अभी नीचे शेर जंप कर रहा है, हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ, पागल थोड़ी हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे को मालूम है तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तो शेर बोला, हाँ ये बात तो है, तुझे भी पता है, कोई बात नहीं, कभी तो नीचे उतरेगा, इंतजार में बैठ गया। अभी वो आदमी सोता जा ना जा, जा, वो जा नहीं रहा, कुत्ता थोड़ी चला जाएगा, शेर है वो बैठा रहा। तो फिर आदमी बैठे 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 उसको नींद आ गई, नींद आ गई, तो एक बंदर उछलता कूदता उस पेड़ पर आ गया। जब वो बंदर आया ना तो खेल रहा था, उसने देखा एक आदमी है, तो शेर ने कहा बंदर को, धक्का मारना इसको, धक्का मार। तो वो बोला कि नहीं, मनुष्य है, इसकी चेतना मेरे से ऊंची है, मेरी तो चेतना नीचे है ना, जानवर ये तो ऊंचा है, मनुष्य है। कह रहे अच्छा तुम ही फेंकेगा? कह रहा क्या पता चलता है, खाएंगे दोनों मिलके। कह रहा मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, मैं तो फ्रूट्स खाता हूँ, मिल जाता है। अभी जब गिर जाएगा अपने आप तो इसका प्रारब्ध होगा, लेकिन मैं इसको धक्का नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा। तो इतनी वार्तालाप चलते चलते ना उसको लगा कुछ चल रहा है, आदमी की नींद खुल गई, मेरे बारे में बात चल रही है, फेंक दो करके। तो बंदर को बोला फेंकना नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो फिर अब बंदर खेलते खेलते बेचारा केला खा रहा था, खाते खाते उसको भी झपकी आ रही थी, थका हुआ था वो, उसकी आंखें बंद। तो अब शेर ने मनुष्य से बोला, देख मैं बहुत भूखा हूँ, तेरे लिए भागा, तू तो आया नहीं, अब कम से कम बंदर को धक्का दे दे, तो मैं कुछ तो खा के जाऊंगा। तो मनुष्य बोला हाँ, इसका पेट भर जाएगा, ये चला जाएगा, मैं उतरूंगा घर चला जाऊंगा, कितना अच्छा आइडिया, 2 मिनट रुक। उन्होंने बंदर को धक्का मार दिया, जैसे धक्का मारा ना, बंदर था वो चेतना में रहता है, चेतन है, उसने तुरंत अपनी पूंछ से अपने आप को अटका लिया ऊपर पेड़ में, है ना, और बच गया, और ज़ूम करके वापस ऊपर आया। मेरे को धक्का मारा तूने? उस आदमी को बोला। तो शेर बोला देखा, मैं तुझसे कह रहा था ना, ये मनुष्य नहीं है, ये चीटर है, चीटर, धोखा उधार, धोखेबाज, ये जब मौका मिलेगा ना तुरंत उसको धक्का दे देगा, तू चाहे इसकी कितनी भी केयर करता रहे ये तुझे धक्का दे देगा, है ना, देख आज तुझे धक्का दे दिया ना इसने। तो उसने कहा अब तो इसे धक्का दे दे, अब तो पता है ये चीटर है, तेरी तो पूंछ टाइट है, टाइट से पकड़ ले इसको, धक्का दे दे, ये तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, पेड़ पे रहने की आदत है, तुरंत नीचे आ जाएगा। और बोला कि नहीं, ये मनुष्य है लेकिन मैं बंदर हूँ, मेरी भी एक इमेज है मार्केट में, जंगल में, मैंने अगर इसे धक्का दिया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तू ना मनुष्य जैसा चीटर है, तू ना दिल्ली वाले आदमी जैसा चीटर है, तो तुझे, मैं चीटर नहीं बनना चाहता, मेरा एक धर्म है, मैं उस धर्म का पालन करना चाहता हूँ, और मैं इसी धर्म में रहूंगा, क्या कि मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, धोखा ही तो करते हैं। वैष्णवास को बोलते हैं प्रभु जी ध्यान पूर्वक जप करते हो? जी प्रभु जी। घर जाते सो जाते, कोई जप नहीं करते। रूपा जी बोलते मैंने ग्रंथ लिखे रात रात, वो वही है, वो बंदर की तरह वानर, इसीलिए बोला जाता है, वानर का मतलब होता है जो नर है या फिर नर नहीं है, नर जैसा दिखता है लेकिन नर नहीं है, वो वानर है। तो जितने भी वैष्णवाद है ना वो भी वानर होते हैं, क्यों? वो दिखते तो है मनुष्य जैसे लेकिन होते हैं आध्यात्मिक मनुष्य, इसलिए उनको बोला जाता है नर या वान। वान मतलब और, ही इज अ मैन और ही इज अ ट्रांसजेंडर मैन, तो इज वानर। तो प्रभुपाद जी सबसे बड़े मार्टर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम ये शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, इस्कॉन में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो नो फॉलोवर्स, कोई फॉलोवर नहीं, नो बुक्स, नो कुक्स, कुछ नहीं है, खाली क्या है, एक विश्वास, क्या मेरे गुरु ने जो बोला है वो मुझे करना है। लेकिन हम उसी गुरुदेव, उसी परंपरा, उन्हीं वैष्णवास को भूल जाते हैं, वही हमको टेंपल में लाकर लीडर बना देते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं पता है आपको प्रभु जी मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ना भक्त को तोड़ता है वो, मेरी ना फंड रेजिंग में कलेक्शन को छीन लेता है वो, ये सारा कुछ कहां से आया है? उन्हीं वैष्णवों के कारण, कहते हैं ना वैसे तो वांछा करतरु करते हैं मॉर्निंग में, उन्हीं की कृपा से तो हम भक्ति कर पा रहे, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मौका आता है किसी को कुछ देने का तो फिर हम क्या लड़ाई करते हैं। मान लीजिए कोई डिवोटी है और आकर विवशवान प्रभु को कुछ दान दे गए तो मैं लड़ाई करने लग जाऊं, नहीं प्रभु जी आपने कैसे ले लिया, वो तो मेरा बनता था, मैंने उनको जोड़ा था, और फिर सुबह बोलू वांछा कल्प करो बस कृपा दो, अरे जब कृपा का टाइम था तब तुमने दिया नहीं, अब तुम कृपा मांगने गए, लेना देना दोनों तरफ से होना चाहिए ना, कुछ दोगे तो कृपा मिलेगी। तो इसलिए आपस में तो कम से कम हमें लड़ाई झगड़ा ना करते हुए थैंकफुल होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा कारण, हमारा श्रवण के प्रति कोई रुचि नहीं है। हाँ कहते हैं ना श्रवण बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भागवतम कहता है सुश्रद्धानां श्रद्धानस्य वासुदेवं कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। हाँ खाली आए हंसी मजाक किया संसार में वापस चले जाएंगे नहीं, वासुदेव कथाओं में रुचि, पढ़ना सुनना बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए भागवतम कहता है कि अगर आप श्रवण नहीं करेंगे तो आप कीर्तन नहीं कर पाएंगे। आपसे बोला जाता है प्रीचिंग करिए, डीवाईएस में जाइए, सेमिनार करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं करते इसलिए बोल नहीं पाते। हाँ प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि किसी भक्त को अगर बोला जाए ना प्रभु जी जरा कृष्ण के बारे में 5 मिनट बोलिए, और अगर वो सुनता नहीं होगा ना तो उसके पसीने छूट जाएंगे, क्या बोलूंगे क्या बोलूं, और बोला जाए क्रिकेटर के बारे में 1 घंटा कमेंट्री कर देगा, फिल्म स्टार 1 घंटा बोल देगा, लेकिन जहां बात आती है चर्चा आती है भगवान के बारे में बोलने के उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, घूम फिर के वापस वही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 इतना ही आगे मुझे और पाओ, और थोड़ा और जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद एक श्लोक और याद, बस कृष्ण के बारे में बोलने में पसीने छूट जाए, क्यों सुनते नहीं है, तो सुनेंगे तो बोलेंगे, और भौतिक भाव रहित होकर सुनना चाहिए। हाँ तो सुनने के लिए बताते हैं किस प्रकार का श्रवण होना चाहिए। एक राजा थे जिनका नाम था राजा कुलशेखर, वो द्वापर युग के शुरू होने के 150 वर्ष बाद ही साउथ इंडिया में आते हैं राजा कुलशेखर, और इस प्रकार के महाराज थे, राजा थे, किंग थे, लेकिन राज ऋषि थे। कथा में इतनी सुनने की रुचि, इतनी सुनने की रुचि कि जब रामचरित्र का वर्णन होता था रामायण का तो उनके राज्य में डेली कोई आता था लेक्चर सुनाने में भागवतम या रामायण, तो जब रामायण सुनते थे और उसमें सीता हरण जब सुनते थे तो पता नहीं हमको क्या हो जाता था, अपने सैनिकों को बोलते थे निकालो तलवारें चलो श्रीलंका रावण के पास तमिलनाडु के पार समुद्र में कूद पड़ते थे, और उनको बोला नहीं 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 महाराज नहीं नहीं महाराज चरित्र है चरित्र महाराज कथा है कथा, ओ फिर वापिस आते थे। तो उस तरह से उनके जो सैनिक थे सेनापति थे उन्होंने सबको बोला जो भी रामायण सुनाने के लिए आए वो क्या करे कभी सीता हरण का चर्चा ना करे, सीता हरण करोगे तो हमारे राजा चले जाएंगे डूब जाएंगे पानी में, ये तो पागल हो जाते सुनते एकदम से। फिर एक बार ऐसी एक व्यक्ति आया जिनको मालूम नहीं था कि इनको क्या प्रॉब्लम है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, भाव भवोर हो जाते हैं, तो वो आए और फिर रामायण की सीता कथा के अंदर पहुंच गए प्रवेश कर गए और बोलने लगे कि सीता हरण बोला है और रावण चुरा कर ले जा रहा है सीता मैया को बिठाकर अपने पुष्पक विमान में, और जैसे ही सुना पुष्पक विमान ने मारा तलवार निकाल के और भाग गए, इतनी जो राज्य छोड़ के भाग रहे हैं, और कहां पहुंच गए सीधे समुद्र में, और आधे समुद्र तक मतलब डूबने गर्दन तक डूब चुके हैं वो, सोचिए ये है। फिर उनको जाल डालकर पकड़ कर लाया गया राजा कुलशेखर, और वो राजा कुलशेखर ने अनेकों अनेकों कविताएं और शास्त्र में वर्णन लिखा है, और उनको बहुत ही उच्च श्रेणी का भक्त बताया गया राज ऋषि कुलशेखर महाराज। हाँ तो ऐसे इस प्रकार का श्रवण चाहिए, और श्रवण करने में क्यों रुचि नहीं है, क्योंकि हम हरि नाम को ध्यान पूर्वक नहीं जपते हैं, हरि नाम से प्रेम नहीं है। कहते हैं कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से नाम यही तत्व है, ये वही तत्व है वही कृष्ण है वही नाम है चिंतामणि नाम, और उस नाम हम सब कुछ करने को तैयार है इस कौन में, बस नाम नहीं होता हमसे, चैंटिंग नहीं होती है, जब करने को हम तैयार नहीं है, ध्यान पूर्वक जब तो भूल जाओ, जब ही नहीं करने को तैयार है। अब बहुत दिन हो जाते हैं, तब फिर व्यक्ति एक आए थे, उनसे मैंने पूछा, बहुत दिन हो गए, 4-5 साल से मंदिर आ रहे थे, मैंने पूछा प्रभु जी कितना जप करते हैं, कह रहे 64। मैंने कहा हरी बोल, हमें 10 साल हो गए अभी तो 16 वाला ध्यान से, 64। कह रहे हाँ 64 बार बोलता हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे 108 में भी आता था, 64 बोल के पब्लिक ने बोलता था, कितनी बार माला कितना करते हैं 64, सब लोग दिव्य भक्त समझते हैं, 64 बार करते हैं, 1, 2, 3, 4 times। तो हमें इस प्रकार का भक्त नहीं बनना है। ए जीवन न रहिला नया है भजन, जीवन रक्षाय मात्र विषय ग्रहण। और भजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आसक्तियां इतनी है इस संसार से, इतनी आसक्ति है, माला तो ना इसके बाद कर लूंगा, पहले ब्रेकफास्ट खा लूं फिर माला, बच्चों को स्कूल भेज दो फिर माला, ऑफिस से वापस आके माला, लंच टाइम में माला, रात के 10 बज गए, 2 घंटा है, 2 घंटे में 16 तो हो जाएंगी, हम उगला को कहते हैं 7-8 मिनट में हो जाती है एक माला, 2 घंटे में माला, मन बोलेगा अंदर से सो जा, क्या करेगा, कल 32 करियो ध्यान पूर्वक। हाँ मन ठीक कह रहा है, ध्यान से करना चाहिए, प्रभु जी बोल रहे थे सेमिनार में, लाइट ऑफ माला का हरी बोल, ध्यान पूर्वक जब करना चाहते हैं तो नो मोर अदर थिंग्स, प्रायोरिटी क्या, हाँ बोल रहे हैं ऐ जीवन ना रहिला ना हया भजन, भजन नहीं हुआ ना जितने उस दिन ये जीवन समाप्त कर दूंगा, जीवन रक्षाया मात्र विषय ग्रहण, विषय उतना ही ग्रहण करूंगा जिससे मेरा जीवन चले। पर जब कर रहे हो ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पीछे से कोई आके बोले ना पूरी जगन्नाथ वहां के साथ बाहर वितरित होना, हरि बोल जय जगन्नाथ भूल गया जब को, जीवन रक्षा है मात्र विषय ग्रहण बोला गया, जीवन की रक्षा तो हो रही थी ना, मर थोड़ी रहता तड़प रहा था, गरा तो प्रसाद नहीं खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन तुरंत छोड़कर बाहर, ये क्या है, ये व्यक्ति का आसक्ति नहीं हरि नाम में, इसी कारण उसको गुरु में प्रेम नहीं है। सब कहते हैं सब छाड़ी हरि नाम ये करे भजन, जय जय भगवान से ही महाजन, जो सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम जपता है वही अत्यंत महाजन है। और कहते हैं महाजन ये गता सपनता, हमें किसको पालन करना है, इन्हीं महाजनों को, कौन से महाजन होते हैं, वो महाजन नहीं है जिनका सरनेम है सुनील महाजन, वो नहीं, महाजन वो व्यक्ति है जिसका जप ध्यान पूर्वक है ना, तो प्रभुपाद जी का जैसा जप होना चाहिए है, प्रभुपाद जी जब जप करते थे तो ध्यान पूर्वक जप करते थे, और एक वक्त जोर जोर से प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे अपने रूम में, और एक वक्त घूम घूम के गलियारे में जप कर रहा था, अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, तो है ना प्रभुपाद जी को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो समझ रहे कि गड़बड़ होने वाली है कुछ, तो उसने देखा प्रभु बोला, वो सेक्रेटरी बोले प्रभुपाद, तो भक्त बोला हाँ प्रभुपाद, हरे कृष्णा 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 हरे राम तो सेक्रेटरी बोला अब तो गया है सच में ना, ये समझ नहीं रहा, तो बोला प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्णा, तो बस बोले फूल का रस कॉलम, और बुलाया तुरंत घंटी बजते सेक्रेटरी ने उत्तर ये भी नहीं सुना प्रभुपाद जी क्या कह रहे, तुरंत भाग के भक्त को खींच के सीधा कमरे में, तो बोले कि तुम्हें जप करने का दिमाग नहीं बुद्धि नहीं है, कलयुग में इस प्रकार का जप नहीं किया जाता था, कलयुग में उपांशु जप किया जाता है, वाचिक जप या मानसिक जप नहीं किया जाता, उपांशु जप, इतना करे आप बोले और आप ही सुने, आपके कारण वैष्णव उठ उठ के जा रहे हैं अपने ये नहीं माने, और आप कह रहे हो क्या क्या वैष्णव सेवा परमो धर्म, वैष्णव सेवा पर वैष्णव सेवा कहाँ करी, वैष्णव के जप से आपने उसे उठा दिया, कह रहा ये नहीं करने देगा, दो माला भी पूरी ध्यान पूर्वक तो छोड़ दो, अब उसकी वाट ना कर देखिए, अब वो जोर जोर से वो सोचता है कि ना देखो सब उठ गए लेकिन मैं इतना दृढ़ हूं मैं बैठा रहूंगा, तुलसी राय हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अकेला रह जाता ना, देखा मैं ही जीत गया, विनर, जैसे होता ना टेबल चेयर वाला कौन सा गेम होता है म्यूजिकल चेयर, एक बच जाता है तो वो एक बच गया, वो सैम द विनर बट ही इज द लूजर, उसके कारण इतने वैष्णव अपराध हो गए, उसने सब छोड़ के चले गए उसको, भूपा जी ने कहा इफ यू वॉन्ट टू चैंट लाउडली गो इन द टेम्पल हॉल एंड चैंट लाउडली इन फ्रंट ऑफ गौरंगा महाप्रभु, डोंट चैंट हियर, हटो भाग यहां से, भगा दिया उसको। तो जप करने का भी एक तरीका है, किस प्रकार से हमें जप करना चाहिए, जप के प्रति आसक्ति न होने के कारण एक है, एक छोटी सी कथा सुनाकर समाप्त करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है, कि एक बार दो पहाड़ थे, एक चीनी का पहाड़ और एक नमक का पहाड़, तो चीनी के पहाड़ पर एक चींटी रहती थी जो चीनी खाती थी, तो मीठी चीनी थी है ना, और एक नमक के पहाड़ पर जो नमकीन चीनी थी। तो हमारे भी भक्त दिखाई देते हैं, एक मीठे भक्त हैं जिनसे मिलने का मन करता है, वाह वाह प्रभु जी कितना मीठा बोलते हैं, एक भक्त हैं जिनसे मिलने का मन नहीं करता, अरे गए तो खर्राट चिल्ला के बोलेगा है ना, तो जो खर्राट है वो हंस रहे हैं। तो फिर तो फिर क्या होता है कि इस प्रकार से वो भक्त जो थे इस तरह से वो चीटी, मीठी चीटी और नमकीन चीटी, हाँ महामिलन होता है ना, आश्रय महामिलन, भक्त और इष्ट गोष्ठी तो दोनों मिली। जब आपस में मिली तो उन्होंने शेयर किया, क्या खाती हो तुम इतनी मीठी हो, चीनी, तुम इतनी नमकीन कैसे हो, मेरा तो किस्मत ही खराब है, सेवा ही ऐसी नमक खाओ बस, तो नमक का तो नमकीन ही उगलेगा, तुम्हें क्या करेगा, परेशान। और वो मीठा खा रही तो मीठा उगलती है। हमने कहा कि मेरे को भी कुछ दो मीठा खाने के लिए, तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, लो जैसे दीपावली पे देते हैं ना, ये लो हरी बोल, ददाती प्रतिग्रहाती गुह्यम इच्छाति गच्छति, देना चाहिए लेना चाहिए, मैं तुमको दे रही हूँ लो खाओ। तो उसने मीठा खाया, जैसे चीनी खाई कहा मीठी है, तो बोल रहे थे मीठी है, तो नमकीन कड़वी लग रही है एकदम। अरे अच्छा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कल मेरा भी थ्रोट खराब था, डॉक्टर सौरभ रूप मुझे लेके गए, वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम, तो ऐसे वो भी एक डिवोटी उनको लेके गए और फिर बोले कि चीटी को मीठा खाने पे मीठा नहीं लगता, चेक करो। तो वह करके को वोकल कॉर्ड चेक किया तो पता चला इतना मोटा नमक का दाना अंदर फंसा हुआ था पहले से, तो मीठा कुछ भी खाओ टेस्ट अंदर तो नमक ही जा रहा था पिघल पिघल के। तो वैसे ही हम कितना भी हरि नाम लेते हैं लेकिन क्या होता है, हमें आनंद नहीं आता, मीठा नहीं लगता। एनर्जी औषधि माया नासी वारा लागी, इससे बढ़िया और कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन हमें लगती नहीं अच्छी, क्यों, संसार का नमक जो है ना नमकीन, इस संसार का जो आसक्तियां हैं, घर परिवार कुकिंग बच्चे ये वो वाइफ लव इतना सब चीजें चल रही है, हरि नाम तो बहुत दूर, रात को 10:30 याद आता है हरि नाम, तब नींद आ जाती है, तो हरि नाम तो होता नहीं। तो इसलिए अगर आप हरि नाम को चाहते हैं, इन आसक्तियों के धागों को काट दीजिए तुरंत, सब छड़ी हरि नाम ये करे भजन, जय जय भाग्यवान सही महाजन, वही व्यक्ति महाजन बन जाएगा जीवन में। हाँ तो इसलिए हमें क्या बनना चाहिए अपने जीवन में, PhD बनना चाहिए, ठीक है, सब भक्तों को PhD करना है तो प्रभु जी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सब लोग आप अपना नाम लिखाइए कि हम लोग क्या बनना चाहिए, PhD क्या बनना चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रभु जी हमें तो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई ये माया रा वैभव ये सब छोड़ना चाहिए, तो फिर PhD क्यों करना चाहिए, PhD का फुल फॉर्म डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी नहीं है, PhD का मतलब है प्यूरिटी, अपने अंदर शुद्धता लेके आइए, ह्यूमैनिटी अपने अंदर विनम्रता लेके आइए, और डिटैचमेंट अनासक्ति करिए संसार से। प्यूरिटी कैसे आएगी, जप करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ह्यूमिलिटी कैसे आएगी, ह्यूमिलिटी कैसे आएगी, ह्यूमिलिटी आती है कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेना करोरपि सहस्रनाम अमानिना मान देना कीर्तनम सदा हरि। तो लोग सोचते हैं पहले मैं विनम्र बनूंगा, फिर सेशन वाला सेशन अटेंड करूंगा, फिर रिस्पेक्ट वाला सेशन, फिर बाद में चैंटिंग हरे कृष्णा। नो, जब आप जप करेंगे हरे कृष्णा तो उसके बाय प्रोडक्ट्स आएंगे अपने जीवन में, जैसे दूध के अंदर मलाई होती है, मक्खन होता है, दही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसी में से निकलता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ही सब कुछ है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो फिर विनम्रता आएगी, विनम्रता का कोई अलग सेमिनार नहीं होता, ह्यूमिलिटी सेमिनार, उसका बेस है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डिटैचमेंट आना सकते इस संसार से, इस संसार से कैसे आना शक्ति आएगी, तो श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए और बोले कि प्रभुपाद मर गया हूं मैं, ये संसार मुझे खींच रहा है वापस। कोई बोलता है क्यों अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़कर आ गए, एक साल का गैप ही तो हुआ, कोई बात नहीं दोबारा ज्वाइन कर लो। मेरा मन वापस करता है पैसे कमाने को, अरे मंदिर की सेवा छोड़कर वापस जाते हैं भौतिक जगत में, नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, घर परिवार का सोचते हैं नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा भी है प्रॉब्लम, तो प्रभुपाद जी ने बोला चैंट लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार की एकमात्र औषधि हरि नाम महामंत्र मांगिया लैला, भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम महामंत्र को हरि नाम चिंतामणि कहकर बोल रहे हैं, चिंतामणि रत्न ऐसा है जो इस धाम का नहीं है, इसलिए इसको जितनी प्रगाढ़ता से पकड़ेंगे उतनी प्रगाढ़ता से हमारे जीवन में प्योरिटी आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी और डिटैचमेंट आएगा, फिर हम सब क्या बन जाएंगे, PhD। हरि बोल। एक गायक है वो गाना गाते थे, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, सुना
ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो मैं सोच रहा था कि ये तो भक्तों के लिए भी होना चाहिए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, चलो भक्तों इससे पहले हरि नाम हो जाए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं समाप्त करें। जी तो भैया, हाँ 10 minutes more,
okay, no problem.
प्रसादम इज लेट, तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, प्रश्न पूछिए। नो अटैचमेंट टू द होली नेम बिकॉज ऑफ द मटेरियल अटैचमेंट्स। भौतिक जीवन में आसक्ति होने के कारण हमारा भगवान के नामों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। जितनी जल्दी भौतिक आसक्तियाँ हमारी समाप्त करेंगे, उतने जल्दी हम क्या कर सकते हैं, भजन कर पाएंगे। जैसे भक्तिनाथ महाराज कथा सुनाते थे, सो प्रचलित कथा सदा अनेकों ग्रंथ शास्त्रों और आचार्य और भक्तों के द्वारा आपने सुनी होगी कि एक पार्टी थी, मैरिज पार्टी, जो एक किनारे से दूसरे किनारा जाना चाहती थी, और उसके अंदर ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा भी था और उनके बराती भी थे, और उन्होंने एक नाविक को हायर किया और कहा कि हमें उस पार ले चलो, आज हमारी शादी है। तो उसने कहा शादी की पार्टी से तो 500 रुपये लूंगा। अरे ठीक है 500 ले लेना, 500 रुपये लगते हैं, 500 ले रहे हो, चलो चलो ले लो, पर उस पार पहुंचाओ जल्दी जल्दी। तो उसने चलाना शुरू किया तो दूर नाइट लाइट नजर आ रही थी और कुछ झलर वलर लगी थी, शादी का घर था। तो वो चलना शुरू किया, चल रहा है, चप्पू चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, और धीरे 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 देख रहे हैं कि लाइट अभी भी उतनी दूर है, उतनी दूर है। सब लोग थक थक कर सोने लग गए, एक आदमी सोया, दूसरा दूल्हा भी सो गया, इनमें बड़ा क्रेप बड़ा वो मचल रहा था, वो मेरी शादी है, मेरी शादी। बाद में वो भी थक गया, सो गया। जब सो गया बिल्कुल एकदम, फिर उसके बाद देखा आंख खुली, हो ये तो दिन हो गया, सुबह के 6 बज रहे हैं, धूप निकल रही है, और ये क्या है, अभी तक हम उस पार नहीं पहुंचे, पूरी रात्रि मेरी शादी खराब कर दी। तो पकड़ लिया उसका कॉलर और बोला तुमने मेरी विवाह खराब कर दिया, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो उसने कहा कि अरे मैंने तो देखो कितनी मेहनत करी, देखो मेरे कपड़े, देखो मेरे कपड़े, तो ऐसे निचोड़ा तो उसने पसीना पसीना। खैरा अच्छा फिर क्यों नहीं हम पहुंच पाए, तो पता चला कि उस नाव का जो लंगर था वो किनारे पे अटका हुआ था। तो चप्पू तो चला रहे हैं लेकिन आसक्तियां लटकी हुई हैं। तो हरे कृष्ण तो करना है, साथ साथ में इस संसार के चप्पू को भी जोड़ना है। ये नहीं कि हरे कृष्ण भी करते रहे और परिवार के मैरिज पार्टियां भी करते रहे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, 4 पार्टियां हैं अगर जैसे हफ्ते में, तो उसमें से एक में जाए या दो में जाए, दो को मिस करें धीरे धीरे। तो अगर धीरे 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 आप ये नहीं करेंगे तो कभी भी हरिनाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, है ना। तो वैष्णवों के प्रति सेवा करने से भी हरिनाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वैष्णवों की अंतरिक्त सेवा करनी चाहिए, है ना। जैसे एक बार बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आता है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में बहुत सुंदर रात्रि कीर्तन कर रहे थे, खूब कीर्तन चलता था। उस कीर्तन के दौरान उन्होंने जब समाप्त हुआ कीर्तन, श्रीवास आंगन से बाहर निकलकर चैतन्य महाप्रभु आए, तो एक दर्जी था, दर्जी होते हैं ना जो सिलाई करते हैं, उस दर्जी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर श्याम सुंदर रूप का दर्शन हो रहा है, बांसुरी लेकर श्याम सुंदर। हाँ तो उसने क्या बोला, जोर से बोलने लगा, मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा, चिल्लाने क्या बोला,
मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा,
इन्होंने देखा और किसी ने नहीं देखा। क्या बोला,
मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा।
क्या देखा, श्याम सुंदर को देखा। दर्जी वो भी मुसलमान, हम उस नदिया ग्राम में बहुत मुसलमान रहते हैं, आज भी रहते हैं, तो मुसलमान होकर मुस्लिम होकर उसने क्या देखा, श्याम सुंदर रूप का दर्शन। और जो भक्त सारा दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उनको दर्शन नहीं हो रहा। तो चैतन्य महाप्रभु से सबने प्रश्न पूछ लिया तुरंत, महाप्रभु इसने आपके कौन से रूप का दर्शन कर लिया। तो उन्होंने बोला जय कृष्ण, नहीं उन्होंने बोला जय कृष्ण सही जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है वही कृष्ण, सही सही गौरा सही जगन्नाथ, वही गौरांग महाप्रभु है। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता हाइला से, जो ब्रज के इंद्र श्याम सुंदर है ब्रजेंद्र नंदन, वही कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, जो कृष्ण है और राधा रानी है वही श्री महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु। तो इसने वो रूप का दर्शन कर लिया। बोले हमको क्यों नहीं होता, कह रहे क्योंकि आप वैष्णवों की सेवा नहीं करते, यार सेवा का मौका आता है तो आप भाग जाते हो इधर उधर। प्रभु जी हरि बोल, आपको बुला रहे, सेवा के टाइम में भाग जाते तुरंत,
अभी हमारा ये जन्माष्टमी पंडाल था, प्रेचिंग पंडाल, उसमें 15 लोगों को प्रेचिंग की सेवा मिली। उनको दो तीन माताएं मेहनत कर रही थी, बाकी सब तो इधर उधर घूम रहे थे। तो जो हमारे गेस्ट आए ना, मुझे हमारे फैमिली में मिला, मुझे हमारा हुआ, मुझे हमारा ठीक एज इट इज। वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, वैष्णव का कहा नहीं मानेंगे, तो फिर कभी हरि नाम में आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस दर्जी को दर्शन हुआ क्योंकि इसने क्या किया, श्रीवास आंगन में जो श्रीवास ठाकुर है उनके और उनके परिवार के भक्तों के वस्त्र ये सिलता है और उसका पैसा भी नहीं लेता। तो ही इज डूइंग सर्विस, सेवा करने मात्र से क्या हो रहा है, उसको हरि नाम और भगवान का दर्शन हो रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भगवान के भक्तों की सेवा करने मात्र से हमको भगवान का दर्शन हो जाता है। और बताते हैं कि जब चेतन महाप्रभु का रात्रि कीर्तन चलता था तो उसी कीर्तन के दौरान जब रात में प्यास लगती थी तो कुछ भक्त आते थे और बाहर देखते थे और वहां पर मटके रखे होते थे जल के, और जल के मटके वो पीते थे। एक बार महाप्रभु ने देखा भक्त जाते हैं नाचते नाचते थक जाते थे। हमारे यहाँ जो होता है ना 15 अगस्त को हमने किया था कीर्तन मेला, बहुत सुंदर शाम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइटें लगा के चारों तरफ और अमोघला बहुत सुंदर उसमें कीर्तन करवाते हैं उसको, और फिर उसमें बीच बीच में हम बोलते हैं। तो भक्त जब थक जाते हैं डांस करते करते गायब हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, अब पानी देना थोड़ा, कोल्ड ड्रिंक देना थोड़ा। तो फिर गुप्ता ग्रुप स्टॉल पे होते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, फिर ड्रॉप कोल्ड ड्रिंक पीते, फिर हरी बोल हरी बोल से नाचते। तो ये सब जाते थे रात्रि कीर्तन में, बाहर जाके मटके से पानी पीते थे, आते थे। तो महाप्रभु ने कहा ये मटके कौन लाता है पानी के, सब जाते हैं पी पी के आ रहे हैं बार बार। बाहर जाके देखा तो सीक्वेंस में लाइन में मटके रखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला श्रीवास ठाकुर से पूछा कि ये कौन है जो इतने सेवा करते हैं मटके रहते हैं। तो देखा उन्होंने कहा एक स्त्री है जो रात में आती है कीर्तन के दौरान, कीर्तन में प्रवेश करती है, नाचती नहीं है, वो क्या करती है मटके भरती है गंगा नदी से और लाकर लाइन में लगाती है डिसिप्लिन में। तो सेवा के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन मेंटेन करना। हाँ एक बार प्रभु जी बोले प्रसाद हम टेढ़े मेढ़े बैठ जाते, बस प्रसाद मिलना चाहिए, डिसिप्लिन सीक्वेंस में कतार में बैठना चाहिए। तो उस तरह से सीक्वेंस में लगाती थी वो लाइन में भगवान का मटके लगाती थी पानी के। तो फिर महाप्रभु ने पूछा इसका क्या नाम है, तो श्रीवास ठाकुर बोले इसका नाम है दुखी। क्या नाम है दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो वैष्णवों की सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता, इसलिए इसका नाम होना चाहिए क्या सुखी। हरी वो तो इस तरह से वैष्णव सेवा करने से भी हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जैसे आदि पुराण में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं ये में भक्ता जना पाता नामे भक्ता चाते जना मत भक्ता नाम चाहे भक्ता से में भक्ता तमामता। जो ये कहता है कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ वो एक्चुअली भक्त नहीं है, वो पागल बन रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। जो ये कहता है मैं भक्तों के भक्त भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों का भक्त हूँ वो एक्चुअली भक्त है। इसलिए महाप्रभु ने भी बोला गोपे भक्ते और पद कमले और दास दास दासानु दास। लेकिन हम क्या बनते हैं बॉस बॉस बसन बॉस। वो प्रभु जी वो कुछ कह रहे हैं, अरे वो तो अभी नए आए ना 2-3 साल, उनको आइडिया नहीं है, मैं 15 साल का हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो मानो, मैं टेम्पल में हेड हूँ ना वो थोड़ी हेड, मेरी बात मानो। तो इस तरह से जो लोग कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है क्या बनना है, दास दास दासन दास। हाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन जहाँ सेवा भाव और विनम्रता की बात है वहाँ पर हमें हमेशा दासत्व अपना बरकरार रखना चाहिए, हमेशा सरेंडर होकर रहना चाहिए भक्तों के प्रति चरणों में। और किसी अगर प्रश्न, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, सब बोर हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी बहुत सारा। तो फिर हम यही समाप्त करते हैं, हरे कृष्णा। श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री पंच तत्व गौर निताय की, पद का पावन श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथा श्री चैतन्य चंद्रामृत की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री शांत मुकुंद प्रभु की जय।